समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज नया सवेरा नई रातें, उठो चलो कुछ कर दिखाओ, सुबह की खूबसूरती को अपनाओ। गुलजार साहब के इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत है आपका आज की नई सुबह आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेनु कटारिया। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और रेनु वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Good morning, namaskar, hello Jaya, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, dear listeners, wherein we will be sharing the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 7th of August. So let's begin with the headlines, Jaya.
बिल्कुल रेनु, और श्रोताओं को हम बता देना चाहेंगे कि अपने कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हम कई विशिष्ट व्यक्तियों को याद करेंगे, तो आज हमारे पास बहुत कुछ खास है, इसलिए अंत तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जीवंत हथकरघा क्षेत्र और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक पहचान में इसके योगदान को सम्मानित करना है। एक रिपोर्ट।
देश भर से लगभग 650 बुनकर, विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, निर्यातक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समारोह में भाग लेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव भी इस समारोह में शामिल होंगी। समारोह में इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट आईसीएआर पूसा इन न्यू दिल्ली टुडे। ऑन द ओकेजन मिस्टर मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग एंड ऑल्सो कन्फर द बेस्ट एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, विच रिफ्लेक्ट्स प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन्स लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू इंश्योरिंग फूड फॉर ऑल। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The award is being launched by the M.S. Swaminathan Research Foundation and the World Academy of Sciences to honor the legacy of M.S. Swaminathan. This international award will recognize individuals from developing countries who have made contributions to improving food security and advancing climate justice, equity and peace for vulnerable and marginalized communities. The event will provide an opportunity to scientists, policymakers, development professionals and other stakeholders to discuss and deliberate on furthering the principles of conference theme. With Raisuddin, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के चौथे जत्थे को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला आधार शिविर पर रोक दिया गया है। खराब मौसम के कारण भारी चट्टानों और मलबा गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के बाद इन यात्रियों को रोका गया है। इस जत्थे में देश के विभिन्न भागों से आए 14 महिलाओं सहित 48 तीर्थयात्री हैं। इनके कल गूंजी पहुंचने की संभावना है और 2 रात विश्राम के बाद ही लिपुलेख दर्रा से होते हुए कैलाश मानसरोवर की ओर रवाना हो सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून महीने से विदेश मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित की जा रही है और यह अगस्त में संपन्न हो जाएगी।
The Global Trade Research Institute, GTRI, criticized the United States' decision to impose an additional 25% tariff on Indian imports, calling it hypocritical and highlighting Washington's selective approach towards its allies in relation to trade with Moscow. We have a report.
In a statement, GTRI cited data showing that China imported $62.6 billion worth of Russian oil in the year 2024, exceeding India's $52.7 billion. Despite this, Beijing has not faced any punitive tariffs. The Institute further noted that the US has ignored the European Union's $39.1 billion in imports from Russia in 2024, including $25.2 billion worth of oil. It also revealed that the US itself imported $3.3 billion in strategic materials from Russia during the same period. Finland-based think tank Center for Research on Energy and Clean Air, CREA, has also exposed US double standard on the issue of Russian oil imports. The CREA, in its latest report, exposes what New Delhi describes as West's double standard in singling out India. Data released by CREA reveal European Union countries' significant role in Russia's fossil fuel revenues surpassing India's contributions since the Ukraine conflict began. Meanwhile, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva has vowed to rally BRICS nations, including India, against US President Donald Trump's rising tariffs on imports. In an interview with a news agency, Lula criticized Trump's push for unilateral deals over multilateral cooperation, warning that small economies have little leverage alone. Aishwarya Rai Nigam, Akashvani News, Delhi.
Moving on to the world of sports, in athletics, India's Anu Rani has won gold medal in the women's javelin throw at the International Wiesław Maniak Memorial in Poland with a season best effort of 62.59 meter. We have a report.
The Asian Games javelin champion threw down the gauntlet with the season's best 62.59 meter, winning gold after opening with a strong 60.96 meter. Turkey's Eda Tuksuz took silver and Australia's Liana Davidson claimed bronze. Anu now ranks among the world's top 10 and eyes the 64-meter mark for the next month's World Athletics Championship in Tokyo. In track events, India's Pooja clocked 2 minutes 2.95 seconds to finish third in women's 800-meter, while Jisna Mathew came sixth in the 400-meter with clocking 54.12 seconds. Over to China, where India's 18-member squad kicks off their campaign at the 12th World Games in Chengdu. Competing in archery, billiards, roller skating, wushu and racquetball, India hopes to add to its all-time medal tally of 5 medals, including a historic gold in 2013. And in football, India's under-20 women's team played out a goalless draw against Indonesia in their AFC Under-20 Asian Cup 2026 qualifier opener. Despite dominating possession and attack, they couldn't find the net. They face Turkmenistan next, aiming for their first win. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल.
Yes, Jaya, I'll begin with Chennai Metro first. The Transport Department will roll out 135 more e-buses, including 55 air-conditioned buses from 11th of this month. The new fleet will operate across 13 routes from the newly upgraded Perambakkam depot. The General Manager of Transport Operations said that the fleet is to meet the demands of the IT corridor commuters. The Managing Director of the Madras Transport Corporation said that this is the first batch of ACE buses. Non-ACE buses will follow the deluxe fare. Another news, Apollo Children's Hospitals Chennai has successfully completed more than 6,000 pediatric cardiac surgeries and 10,000 interventional procedures since 2009. The hospital's Department of Cardiac Sciences has been a leader in treating congenital and acquired heart diseases, including complex surgeries in newborns and infants. Moving on to you, Jaya, kya samachar hai Delhi se hamare paas?
Ji, bilkul. Delhi mein aaye praman patra ke liye ab Aadhaar anivarya hoga. Delhi ke upraajyapal Vinay Kumar Saxena ne sarkar ke is prastav ko manzoori di. Yah praman patra sarkari yojanaon ke tahat milne wale vittiya labhon ki patrata nirdharit karta hai. Is pehal ka uddeshy dhandli aur anyamitataon ko rokna hai. Aadesh ke anusaar ab keval vastavik aur patra labhartiyon ko hi sarkari yojanaon ka labh milega, jisse is prakriya mein पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी. वहीं 29वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल 10 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया, जिसमें विविध विषयों पर भारतीय पुस्तकों का एक विशाल फलक प्रस्तुत किया जाएगा. यह मेला व्यावसायिक लेन देन, नए संपर्क स्थापित करने, सह प्रकाशन व्यवस्था, अनुवाद और कॉपीराइटर व्यवस्था, पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है. मेले के दौरान कई सम्मेलन और सेमिनार, पुस्तक विमोचन, पुस्तक चर्चाएं और लेखक से मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली से एक और खबर है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शेखावत ने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के उदयमान और स्थापित कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के एक जीवन सांस्कृतिक मंच है। इस वर्ष पहली बार प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेता कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।
Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah paid a surprise visit to the Victoria Hospital in Bengaluru yesterday. Interacting with the doctors, the Chief Minister told them to be empathetic towards the patients, treat them with patience and provide free and first-class healthcare services. The Chief Minister also visited the Vani Vilas Hospital where over 40 babies are delivered every day. He noted that there is a rush as people from other states come here for treatment. He informed that a proposal is being considered to enhance the 120-bed hospital to 300 beds in the state. He assured of assistance to create more beds and doctors in Vani Vilas. जया बताइए बॉम्बे की मुंबई की खबरें।
बिल्कुल, महाराष्ट्र की 5 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों की विकास योजनाओं के उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन में तेजी लाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्य की देखरेख के लिए 5 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने ज्योतिर्लिंग स्थलों पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी करें और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करें। ये नियुक्तियां हाल ही में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में दी गई औपचारिक मंजूरी के बाद की गई है। वहीं बृहन मुंबई नगर पालिका ने दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित मरीन ड्राइव के प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बीएमसी आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने कल नरीमन पॉइंट से गीरगांव चौपाटी तक मरीन ड्राइव खंड का औचक निरीक्षण करने के बाद नगर निगम और पुलिस अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह क्षेत्र स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षक बना रहे।
Moving on to Hyderabad Metro, Telangana State Agriculture Minister T. Nageshwar Rao urged the Union Minister for Chemicals and Fertilizers, J.P. Nadda, to supply the urea which is due to the state immediately. He demanded immediate steps to make up the shortage in the supply of urea from April till now, along with the allocation for August. He called on the minister at Parliament yesterday. An official release stated that the minister informed the centre that only 1.09 lakh tons of urea is available in the state and that farmers may face difficulties if there is a delay in supply. The centre has allocated 1.70 lakh tons of urea to the state for August. The minister also met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and requested her to increase the import duty on crude palm oil to 44% as it had been in March 2018.
अब समय है देश की सांस्कृतिक राजधानी का हाल जानने का
जी।
तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI ने कल कोलकाता में विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नारी विंग्स ऑफ विजडम शीर्षक वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक डॉ एन कलेसेल्वी ने किया। उन्होंने कहा कि घर की रसोई वैज्ञानिक और प्रशासनिक रचनात्मकता का स्रोत होती है। ZSI के निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी FM गोल्ड पर जया और रेनू के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के भी आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
And Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is also expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की।
Yes, Jaya, we will begin with the National Handloom Day that we are celebrating today.
Jee.
So in the year 2015, the Government of India declared 7th of August as the National Handloom Day, commemorating the momentous occasion. The major aim behind the same was to honor the handloom sector's historical significance.
जी बिल्कुल रेनु, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की न्यूज स्वदेशी आंदोलन पर है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था।
Exactly, you know what, the movement was in response to the partition of Bengal by the British. The aim of the movement was to call for the boycott of foreign goods and the revival of indigenous industries, especially the handloom sector.
बिल्कुल, भारतीय हथकरघा के उपयोग को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक और आर्थिक प्रतिरोध माना जाता था। आज यही भावना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत के बुनकरों को समर्थन देने के प्रयासों को प्रेरित करती है, और यह उत्सव भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के संरक्षण में हथकरघा बुनकरों के योगदान को मान्यता देता है। भारत में हथकरघा उद्योग सदियों से न केवल आजीविका के स्रोत के रूप में है, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि बुनाई एक व्यवसाय से कहीं अधिक यह एक पहचान और विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।
Very true, Jaya. The handloom sector continues to be a pillar of India's rural economy and cultural identity, employing over 35 lakh people with more than 70% of them women. The sector is a beacon of sustainable development, women empowerment and eco-friendly production.
जी रेणु, ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कुशल हाथों और रचनात्मकता भावना का वह उत्सव है जो भारतीय हथकरघा को एक कलातीत विरासत बनाते हैं।
वेरी ट्रू। So let's move on to more events in history that happened on this day.
जी बिल्कुल, आज 7 अगस्त 2025 है और आज ही के दिन 1606 में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का पहली बार मंचन किंग्स जेम्स प्रथम के लिए किया गया था, और 1880 में उचित वक्ता पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
In 1906, on this day, the first Indian flag against the imperialist British administration was hoisted in Kolkata. In 1906, this flag had three horizontal stripes of red, yellow and green with Vande Mataram written in the middle. The red strip on the flag had sun and a crescent moon, and the green strip had eight half-opened lotuses. It is believed to have been designed by freedom fighters Sachendra Prasad Bose and Hemchandra Kanugo. And on the same day, Jaya, in 1942, that is 7th of August, in the Allies' first major offensive in the Pacific theater during World War II, U.S. Marines on this day, 1942, landed on Guadalcanal and captured the airfield from Japan, sparking a battle that lasted some 6 months.
रेणु, इससे ठीक पहले अगर हम 1905 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था, और वहीं 1944 में पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और 5 टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण हुआ था।
So much that happened on this day, right, Jaya?
Yes.
So also on the same day in the year 1959, the first US satellite to photograph the Earth was launched. From the Atlantic Missile Range in Cape Canaveral, Florida, the U.S. unmanned spacecraft Explorer 6 was launched into the orbit around the Earth. The spacecraft, commonly known as the Paddle Wheel Satellite, featured a photocell scanner that transmitted a crude picture of the Earth's surface and cloud cover from a distance of 17,000 miles. Released by NASA in September, the first photograph ever taken of the Earth by a U.S. satellite depicted a crescent shape of Earth of the planet in sunlight. It was Mexico, captured by Explorer 6 as it raced westward over the Earth at speeds in excess of 20,000 miles an hour.
जी बिल्कुल, और इसके ठीक बाद 1960 में अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आजादी मिली थी।
जी बिल्कुल,
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
यस,
तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महान बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता को। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय कराने और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बड़ी भूमिका रही है। दुनिया में रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनकी छाप दिखाई पड़ती है। उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टैगोर की साहित्यिक प्रतिष्ठा और उनकी कविताओं के प्रति सम्मान से अत्यधिक प्रभावित हैं। हालांकि उन्होंने उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और हजारों गीत भी लिखे हैं। 1887 में टैगोर ने अपना लिखा एक गीत तोबो मोने रेखो रिकॉर्ड किया था।
যদি দূরে যাই চলে তবু মনে রেখো, যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে মনে রেখো।
একলা চলো রে উনহীঁ গীতো মে এক হ্যাঁ, সুনতে হ্যাঁ কিশোর কুমার কি আওয়াজ মে।
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না।
And today is the death anniversary of J. Om Prakash, who was an Indian Bollywood film producer and director. Jaya, unhone bahut sari movies ko direct kiya tha, like Aapki Kasam, Akraman, Aashiq Baharon Ka, Aakhir Kyun, and so many, many more. His films were romantic musical dramas noted for their strong emotional appeal. They often explored complex relationships with characters grappling with jealousy, betrayal, doubt, and the consequences of their actions. His narratives address themes such as fidelity and extramarital affairs directly, depicting the hardships and lessons learned through life's trials.
और आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा ने। उनका ओरिजिनल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा का नाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। बाद में यह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरा फिल्म जगत उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। अपनी साहित्यिक सोच के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। शुरुआत में वे रेलवे में थे, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में ले आई। गुलशन जी को बचपन से ही लिखने का शौक था। बचपन में वे अपनी माँ के साथ भजन मंडली में जाया करते थे और वहीं भजन लिखने से उनकी लेखनी की शुरुआत हुई। फिल्म सट्टा बाजार जो 1957 में बनी थी उसके लिए लिखे गए गाने से उन्हें पहली सफलता मिली। उनका लिखा यह गीत बेहद लोकप्रिय हुआ जिसके गायक हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर।
तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे।
गुलशन जी के इस गीत ने पूरे भारत में उनके नाम का सिक्का जमा दिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने लिखे। फिल्म उपकार के लिए लिखा गया मेरे देश की धरती सोना उगले गीत ने उन्हें 1967 में सर्वश्रेष्ठ गीत फिल्म फेयर पुरस्कार दिला दिया।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
गुलशन बावरा ने जीवन के हर रंग के गीतों को अल्फाज दिए। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीतों के माध्यम से वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
And today is the death anniversary of Esther Phillips, who was an American singer best known for her R&B vocals. She rose to prominence in 1950s, scoring several major R&B hits, including Double Crossing Blues. Phillips received 4 Grammy nominations, including for her album From a Whisper to a Scream in 1973, as well as for the album that featured a disco recording of What a Difference a Day Makes. But here we're going to listen to And I Love Him.
I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too.
आज ही जन्मदिन है एम एस स्वामीनाथन की, जो अनुवांशिकी विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक थे, जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश से उबार कर 25 वर्ष में कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था।
And today is the birthday of Paul Bruce Dickinson, who is an English singer who is best known as the lead vocalist of the heavy metal band Iron Maiden. Dickinson has performed in the band across two stints from 1981 to 1993 and from 1999 to the present day. He is known for his wide-ranging operatic vocal style and energetic stage presence. Let's listen into the Number of the Beast song here.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that?
And today we are remembering Keshto Mukherjee, who was an Indian actor and comedian. He was born in Kolkata. He is specialized in comic drunkard roles in Hindi films. Unke baare mein kya bolein? Kyun na hum unka ek dialogue hi sun le?
Ji, bilkul.
Yes.
Inspector sahab, aap aa gaye?
Main inspector nahi hoon.
Inspector nahi hai? Zaroor koi chor utar ke badmash dabange hoga.
Hey!
Aare kya? Ye police station hai. Yahan police hogi, nahi to chor utar ke badmash dabange hoga. Nahi to koi mahatma thodi hoga.
Hey! मैं बिजनेसमैन हूँ।
बिजनेसमैन? तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आप ग्रेट टू मीट हो? नहीं, आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है।
आज जन्मदिन है ख्याति प्राप्त भारतीय गायक सुरेश वाडकर का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे सुरेश भारतीय सिनेमा के शुरुआती गायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने 8-10 साल की उम्र में ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। सुरेश वाडकर मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के गायक हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मराठी, उड़िया और कोंकणी भाषा में भी बहुत गाने गाए। इसके साथ ही उन्होंने कई भजन भी गाए। उनका पहला गीत रविन्द्र जैन की फिल्म पहेली के लिए था।
झिलमिल झिल
1981 की फिल्म क्रोधी में उन्हें लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका मिला।
चल 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 चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा।
इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और घर घर में अपनी पहचान बना ली।
कुछ नहीं फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग।
श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।